دستور ولایت آئے سو دستور ہدایت آئے سو.
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ آل اللہ واللعنة الدائمة الابدية على اعدائهم اعداء اللہ من یوم عداوتهم الى یوم لقاء اللہ. برادران عزیز، آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ تو سنا ہوگا، قرآن کریم میں بھی ہے، اکثر علماء بھی پڑھتے ہیں اس کو، آپ سب کو یاد ہوگا. میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو فرشتوں نے اعتراض کیا. فرشتے کیا، اصل میں تو ابلیس نے اعتراض کیا، شیطان نے، اور اس وقت وہ فرشتوں کی جماعت میں شامل تھا. اس نے کہا کہ بارے اللہ تو اس کو بنا رہا ہے جو زمین پہ فساد پھیلائے گا، ہم تو تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں. تو خدا نے کیا کیا، خدا نے آدم علیہ السلام کو کچھ اسماء سکھائے. وعلم الآدم اسماء کلہ، ہے نا، آدم علیہ السلام کو خدا نے کچھ اسماء سکھائے. اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ میں نے کیا سکھایا. سکھایا کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. پوچھ کس سے رہا ہے؟ فرشتوں سے. اگر کہیں آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جائے، ہمارے کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کوئی ٹیچر ایسا ہو جو کسی ایک سیکشن کو، ایک کلاس کو کوئی ٹاپک پڑھا دے اور دوسرے سیکشن سے پوچھے کہ بتاؤ میں نے کیا پڑھایا، تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ جو بھی جواب دیں گے اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں اس جواب کو، یہاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ٹیچر نے کوئی ایک ٹاپک نہ پڑھایا ہو سپوز، اور اس ٹاپک کا پیپر میں سوال دے دے، تو پوری کلاس جو ہے وہ احتجاج شروع کر دیتی کہ یہ آپ نے پڑھایا ہی نہیں. تو خدا نے آدم علیہ السلام کو جو کچھ پڑھایا اس کے بارے میں فرشتوں سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ میں نے کیا پڑھایا. تو فرشتوں کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تو نے تو ہمیں پڑھایا ہی نہیں ہے، جن کو تو نے پڑھایا اس سے یہ سوال کر. لیکن یہ فرشتے ہیں، یہ ایسے جوابات نہیں دیتے. ان کے دماغ میں ایسے جوابات آتے ہی نہیں، کیونکہ فرشتوں کے سامنے خدا نے ایک ڈیمو کر کے دکھایا کہ آدم علیہ السلام کو کچھ نئی چیز سکھائی، فرشتوں کے سامنے سکھائی. تو فرشتوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ جو خدا نے مخلوق بنائی ہے انسان، اس کے اندر ایک ایسی کوالٹی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، کہ اس کو ایک نئی چیز سکھائی گئی اور اس نے اس کو یاد کر لیا. ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے. فرشتوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے عطا کیا. تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو نئی نئی چیزیں سیکھ سکتا ہے. جیسے موبائل ہے، ایک موبائل پہلے آتا تھا، اب بھی آتا ہے، وہ جو بٹن والا موبائل ہے نا، اس کے اندر جتنے فنکشنز ہوتے ہیں وہ سب بلٹ ان ہوتے ہیں جو کمپنی نے ڈال دی ہیں اس کے اندر. لیکن ایک موبائل وہ ہے جو آپ سب کے پاس ہے، اسمارٹ فون، یہ والا موبائل. اس پہ ایک نئی اپلیکیشن انسٹال کر دیں، ایک نیا فنکشن شروع کر دیتا ہے، ایک نئی چیز ڈال دیں، نیا کام شروع ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسمارٹ ہے. انسان وہ اسمارٹ کریچر ہے جو نئی نئی چیزیں سیکھ سکتا ہے اور نئے نئے کام کر سکتا ہے. فرشتے ہوں یا جن ہوں یا کوئی اور مخلوق ہو، وہ نوکیا کے فون کی طرح ہیں. جو کچھ اللہ نے اس کے ڈیفالٹ میں ڈال دیا، اب ڈیفالٹ ذرا کمپیوٹر اور اس کی لینگویج ہے، جو کچھ خدا نے اس کی انسٹنکٹ میں ڈال دیا، اس کی جبلت میں ڈال دیا، وہ وہی کام کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. لیکن انسان کے اندر یہ کوالٹی ہے. کہتے ہیں انسان وہ ہے جو مل جل کے زندگی گزارتا ہے، سوشل اینیمل ہے، नहीं, मिलजुल के तो शहद की मक्खी भी जिंदगी गुजारती है, फिर शहद की मक्खी की जिंदगी में और इंसान की जिंदगी में क्या फर्क है। देखिए 5000 साल पहले की जो शहद की मक्खी थी, जो उसकी एक्टिविटीज थी, जो उसके फंक्शन थे, आज की मक्खी के बेआईने ही वही है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। जो वो छत्ता बनाती थी जिस ज्योमेट्रिकल डिजाइन के साथ, जिस एंगल के साथ, आज की मक्खी बिल्कुल वैसी बनाती, जबकि 5000 साल पहले का इंसान जिस तरह के मकान बनाता था, आज का इंसान वैसा मकान नहीं बनाता। 3000 साल पहले का इंसान जिस किस्म के हथियार, आलात, औजार इस्तेमाल करता था, आज का इंसान नहीं करता। 1000 साल पहले का इंसान जिस किस्म के कपड़े पहनता था, आज का इंसान वह नहीं पहनता। 50 साल पहले का इंसान जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता था, आज वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। इंसान के अंदर एक रिनोवेशन है, एक इनोवेशन कंटिन्यूसली। ये वजह है कि इंसान नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं। तो बेतहाशा ईजादात हुई हैं और इंसानी तमद्दुनी तरक्की जो है वो रवा दवा हैं और ये सिलसिला जारी और सारी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान कोई ऐसी चीज़ ईजाद कर लेता है जिसका इम्पैक्ट बहुत शदीद होता है, बहुत ज़्यादा होता है आपकी फिक्र पर, आपकी फिलॉसफी पर, आपकी सोसाइटी पर, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर, आपके इंटेलेक्चुअल थॉट्स एंड व्यूज के ऊपर शदीद इम्पैक्ट होता है। तो कंप्यूटर इज वन ऑफ देम। कि जब कंप्यूटर आया तो एक तो ये कि ये जो रिनोवेशन और इनोवेशन है टेक्नोलॉजिकल, ये बहुत तेज हो गया, बहुत फास्ट हो गया। दूसरे ये हुआ कि चीजें जो हैं वो ऐसी ऐसी सामने आई जो इससे पहले कभी इंसान सोच नहीं सकता था। मुझसे पहले कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, मैं कंप्यूटर साइंस का नहीं हूं, मैं तो इस्लामिक स्टडीज का प्रोफेसर हूं, लेकिन मैं आपके सामने वो बातें करने के लिए आया हूं कि जिसकी तरफ रहबर मौज़म ने इशारा फरमाया। खुदा ने हमें एक ऐसा रहबर अता फरमाया है, आप यकीन कीजिए कि इतनी बड़ी नेमत है कि जितना शुक्र अदा करें कम। इतना विजन, इतने विजनरी लीडरशिप, हम न सिर्फ फख्र के साथ बल्कि चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि आलम इस्लाम में कोई नहीं मिलेगा आपको, विद ड्यू रेस्पेक्ट फॉर ऑल अदर मुस्लिम लीडर्स एंड उलमा, कि आपको आलम इस्लाम में कोई नहीं मिलेगा। किसी एतबार से आप देख लें, ये जंग मंग और स्ट्रेटेजिकल वॉर, ये तो आप देख ही चुके हैं जो हो रहा है इस वक्त मिडिल ईस्ट में, मैं उस तरफ इशारा नहीं करूंगा, लेकिन आप उसमें भी देखें कि रहबर का विजन कितना परफेक्ट है और कितना कामयाब है। लेकिन जो बात मैं अर्ज करने जा रहा हूं वो ये कि रहबर मौज़म अपने मुख्तलिफ खिताबात में मुसलसल एक चीज पर जोर देते हैं, एक लफ्ज आप फ्रीक्वेंटली सुनेंगे उनसे, और वह है पीशरफ्त। पीशरफ्त, पीशरफ्त यानी एडवांसमेंट, एडवांसमेंट, एडवांसमेंट। आगे बढ़ो और काम करो और रिसर्च करो और तरक्की करो, ये वो सोच दे रहे हैं। यहां तक कि वो तो ये कहती है कि दिस इज द राइट टाइम टू एस्टैब्लिश अ न्यू मुस्लिम सिविलाइजेशन, ये सही वक्त है, आप एक मुस्लिम सिविलाइजेशन को रिवाइव कर सकते हैं। तो वो मुसलसल इस चीज पे जोर दे रहे हैं। और चूंकि आज का मौजू एआई है, इसलिए एआई के हवाले से मैं चंद बातें अर्ज करूं, आगे मैं रहबर के अखबार से इंशाल्लाह गुफ्तगू करूंगा। कि जब हमारे यहां कहा जाता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो तलबा हैं, इवन बड़े बड़े जो असातिज़ा भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, उनका जहन मैक्सिमम चैट जीपीटी की तरफ जाता है, क्योंकि हमने अपने यहां एआई का नाम जो है चैट जीपीटी से सुना है। और चैट जीपीटी का कमाल यह है कि हमें हर सवाल का जवाब दे देता है। जवाब तो गूगल भी दे रहा था, लेकिन गूगल वेबसाइट खोल के दिया करता था, ये जो है जवाब बना के दे देता है, पका के हलवा प्लेट में रख के सजा के। हम उस पर थोड़ा सा बादाम और किशमिश और उसके छिड़काव करते हैं और आगे पेश कर देते हैं। वैसे स्टूडेंट्स को असाइनमेंट लिखना है चैट जीपीटी, किसी को एमफिल पीएचडी के लिए सिनॉप्सिस जमा कराना है चैट जीपीटी, किसी को पेपर लिखना है तो चैट जीपीटी। तो हमारा जो कुल एआई है वो चैट जीपीटी या इसी जैसे एक दो और एप्लीकेशंस हैं जिसके तरफ इशारा भी हुआ, इसके आगे हमारा विजन नहीं है। देखिए, दुनिया टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो गई है। ये जो टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 1954 में कॉइन हुआ है, 1954 उस जमाने में ये टर्म कॉइन हुआ। कि जो आज आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, या इंटरनेट आवाम में आने से पहले फौज इस्तेमाल करती थी अमेरिका में। तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, बहुत एडवांस हो गई है, हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह गए। हम मांगे तांगे की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, उसको तो कोई और तैयार करता है, इस्तेमाल हम करते हैं। हमारा हाल ये कि दूसरे लोग उसको ईजाद करते हैं और हम उसको फकत इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसलिए कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये बुनियादी तौर पर नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी है। किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, आज जो जंग है टेक्नोलॉजिकल वॉर है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है वो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी, यानी हर टेक्नोलॉजी के पीछे एक नॉलेज है। अगर आप नॉलेज में कामयाबी हासिल करेंगे, आप नॉलेज में एक्सपर्टीज हासिल करेंगे, अगर आप नॉलेज में तरक्की करेंगे, तो टेक्नोलॉजी खुद चल के आपके कदमों पे आ जाएगी। लेकिन अगर हम नॉलेज पर काम नहीं करेंगे और मांगे टांगे की टेक्नोलॉजी खरीद लेंगे किसी और मुल्क से, तो वो टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी, कम से कम बुरे वक्त में काम नहीं आएगी। इसकी ज्यादा तशरीह नहीं करना चाहता मैं। तो टेक्नोलॉजी जो है वो नॉलेज बेस्ड है, आप नॉलेज के अंदर काम करेंगे टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाएगी। किसी और कौम से आप मांग के खरीद के टेक्नोलॉजी लेंगे, अव्वलन तो वो कौम आपको पूरी टेक्नोलॉजी नहीं देगी, आपको पता ही नहीं होगा कि आपके साथ क्या फ्रॉड हो रहा है। ये तो आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप आपस में कोई बात कर रहे हैं किसी मौजू के ऊपर, और थोड़ी देर के बाद आप फेसबुक खोलते हैं तो उसमें उसी चीज का स्टार आना शुरू हो जाता है, और लोग कहते हैं ये फेसबुक हमारी बातें सुनता है। तो ये फेसबुक आपकी बातें सुनता है, कैसे सुनता है? सुनता तो है, वो इस तरह सुनता है कि जब आपने फेसबुक को इंस्टॉल किया था उस वक्त उसने कहा था हमें एक्सेस दो अपने कॉन्टेक्ट में, अपने माइक में, अपने कैमरे पे, अपने फलां पे, आपने सबको यस 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 किया। नो कर सकते हैं किसी को? एक ऑप्शन को भी आप नो करेंगे इंस्टॉल नहीं होगा वो। तो आपने अपने माइक का एक्सेस फेसबुक को दिया है, फेसबुक से आपका माइक का क्या ताल्लुक है? आपने अपने कॉन्टेक्ट्स, आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट, उसका एक्सेस फेसबुक को दिया हुआ है। आपने अपने फोटोज और वीडियोस का एक्सेस फेसबुक को दिया हुआ है, या किसी और को, एक तो मिसाल दे रहा हूं फेसबुक की मैं, सोशल मीडिया पे। तो आपने तो खुद ही एक्सेस दिया हुआ है, आपने तो खुद ही एक जासूस को सारी मालूमात दे दी, वो आपसे खेलता है, वो आपके डेटा को आगे बेचता है। आपने खुद व्हाट्सएप को सारी एक्सेस दी हुई है। व्हाट्सएप किस चीज से कमाता है? चलो फेसबुक में तो इश्तहार है, यूट्यूब में तो इश्तहारात हैं, व्हाट्सएप में कौन से इश्तहारात हैं? कोई इश्तहार नहीं, कोई इश्तहार नहीं है। इसके बावजूद आपको ऐसी फैसिलिटी दे रहा है व्हाट्सएप। जब से ये व्हाट्सएप आया, सारे दूसरे एप्लीकेशन पीछे चले गए, टेलीफोन की सारी तारे खंबे और सब आउटडेट हो गए, हर आदमी व्हाट्सएप पे लगा हुआ है। तो ये फ्री सर्विस आपको दे रहा है, इतनी जबरदस्त यूनिवर्सल सर्विस। क्यों भाई? There is no concept of free meal, you know. Free कोई चीज नहीं होती दुनिया में, तो कहीं से तो कमा रहा होगा ये। तो ये आपके डेटा से कमा रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन से कमा रहा है। तो हमारे पास एक खिलौना बनाकर पेश किया जाता है, हम उसको इस्तेमाल करते, हमें नहीं पता उसके पीछे क्या हो रहा है। टेक्नोलॉजी उसके पीछे है, जो सामने हमारे चीज आ रही है ये टेक्नोलॉजी नहीं है। ये वो डिस्प्ले है, और ये उतना डिस्प्ले है जितना वो चाहते हैं, जितना वो हमें दिखाना चाहते हैं। हम समझते हैं हमने इसको ऑफ कर दिया और ये ऑफ हो गया। नो, ये ऑफ नहीं हुआ, ये ऑन है। तो रहे मौसम इसी चीज की तरफ इशारा कर रही हैं कि आप नॉलेज के ऊपर काम करें, टेक्नोलॉजी पे काम करें, एडवांसमेंट पे काम करें, साइंस पे काम करें, अपना काम खुद करें, मांगे तांगे की टेक्नोलॉजी पे भरोसा ना करें। अब बात एआई से शुरू होती है। पता नहीं मुझे आप लोगों को कितना नजर आ रहा है, ये नजर मुझे भी नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे मोबाइल में भी है, मैं इसको यहां से देखता हूं। मैंने सिर्फ तीन जुमले रहबर के निकाले, ज्यादा नहीं। पहला है कि पेस ऑफ एआई डेवलपमेंट। अच्छा, ये अंग्रेजी तर्जुमा मैंने इसलिए उठाया है कि उर्दू तर्जुमा जो मैंने देखा था उसके अंदर वो टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो एक्चुअली जो कंप्यूटर की हैं उनको सही डिफाइन नहीं किया गया है, तो अंग्रेजी में एज इट इज जाहिर है कि वो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं। द स्पीड एट विच AI इज एडवांसिंग वर्ल्ड वाइज इज एस्टॉनिशिंग। इतनी तो समझ गए होंगे आप लोग अंग्रेजी। AI इज बींग यूटिलाइज इन बोथ आवर मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। AI इस वक्त मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी इस्तेमाल कर रही। ये शहीद सनवार को जिस तरह शहीद किया गया, वो जब ड्रोन आया तो उसने डिटेक्ट किया, उनका फेस डिटेक्ट करके उसने समझ लिया कि ये वो शख्स है जो मतलूबा शख्स है और इसको टारगेट करना है, या एटलीस्ट उसने ये समझ लिया कि ये जिंदा है अभी। अगर वो अपने आप को मुर्दा बना लेते, अगर वो अपने चेहरे पे कोई चीज रख लेते तो शायद वो ड्रोन डिटेक्ट नहीं कर पाता और फिर वो फायर नहीं करता। उसने डिटेक्ट किया और फिर फायर किया। तो इतना इंटेलिजेंट रडार है उसके अंदर कि वो डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद डिसीजन लेता है, फिर डिसीजन लेने के बाद वो एक्ट भी करता है। तो ये दिस इज द सेकंड लेवल ऑफ AI। एक तो पहला लेवल है जो हम चैट GPT से क्वेश्चन लिखते हैं और आंसर हासिल करते हैं। नो, इसके आगे एप्लीकेशन लेवल पे देखें कि कहां कहां इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो मिलिट्री में, अच्छा ऐसा नहीं है कि अगर इसराइल इस्तेमाल कर रहा है तो जो जिहादी हैं वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कुछ अरसे पहले की बात है कि हिजबुल्ला ने एक ऐसा ड्रोन भेजा जो इसराइल के हसास तनसीबात की वीडियो कोई एक घंटे तक बनाता रहा और उसके बाद सही और सालिम वापस भी आ गया और इसराइलियों को पता भी नहीं चला। और हैफा के हसास तनसीबात, फौजी तनसीबात, उनकी वीडियो, फिर हिजबुल्ला ने उस वीडियो को रिलीज कर दिया, आम कर दिया, ये दिखाने के लिए देखो हमारे हमारा एक्सेस वहां तक है। तो टेक्नोलॉजी का मुकाबला टेक्नोलॉजी ही से हो रहा है। बात सादा लोग कह रहे हैं ना कि उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, तो उनके पास टेक्नोलॉजी है तो इनके पास भी है। जाहिर है उनके पास जो टेक्नोलॉजी है इसराइल के पास वो अमेरिका की दी हुई है, इसराइल के पास तो कोई औकात नहीं है। अभी अमेरिका उसके पीछे से हाथ उठा ले, ये 3 दिन के मार नहीं है इसराइल। तो वह टेक्नोलॉजी असल में अमेरिका की है जो इस्तेमाल हो रही। और ये बात तो हकीकत है कि अभी तक हम मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो अमेरिका के मुकाबले पे तो नहीं आ सकते टेक्नोलॉजी में। और अगर ईरान की आप बात करें तो ईरान पर तो मुसलसल पाबंदी है, सैंक्शन है हर तरह के। सैंक्शन के बावजूद जितनी एडवांसमेंट उन्होंने की है, उन्होंने अमेरिका के ड्रोन को अपने मुल्क में उतार लिया, मार के नहीं गिराया। मार के गिराने की ताकत हम भी रखते हैं, पाकिस्तानी हिम्मत नहीं रखते बस। लेकिन उन्होंने मार के नहीं गिराया, उन्होंने उतार लिया। उतारने का मतलब आप समझते हैं, ड्रोन जो उड़ता है वो बगैर पायलट के होता है और वो कहीं और से कंट्रोल होता है। उतारने का मतलब ये है कि आपने उनके कंट्रोल से उसको निकाल के और हैक करके अपने कंट्रोल में ले लिया। ये जब मुमकिन है, जब आपकी टेक्नोलॉजी उनसे ज्यादा एडवांस हो, उन पर हावी हो, तो जब आप उतार सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का दौर है, मुकाबला टेक्नोलॉजी का है। उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज डिसीजन मेकिंग जो है वो AI से हो रही है, डिसीजन मेकिंग। बट वी शुड नॉट बी डिसीव्ड बाय दिस, इसे धोखा नहीं खाना चाहिए। मेयरली बींग ए यूजर ऑफ AI इज नॉट ए सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। ये AI अगर आप इस्तेमाल करते हैं कोई कमाल नहीं है कि आप चैट GPT से असाइनमेंट बना लेते हैं, ये नहीं कह रहे नेवर। जब से चैट GPT आया है चीटिंग बहुत बढ़ गई है। अभी आपके सामने बयान भी कर रहे थे उस्ताद मोहतरम कि जो लोग चीटिंग कर रहे हैं आज, अगर फर्ज करें उनको डिग्री मिल गई PhD की, खुश खुश सेलिब्रेट करके डिग्री घर लेकर गए, आज ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं आए हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी के प्लेजरिज्म को पकड़ सकें, काम हो रहा है इसके ऊपर, लेकिन ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आज नहीं एक साल बाद आ जाएगा। कुछ टूल्स आए हैं लेकिन इतने इफेक्टिव नहीं है वो, और जैसे ये टूल्स आते हैं ना, चीटरों का दिमाग भी चलता है, जो चीटर होते हैं ना उनके दिमाग भी बहुत चलता है, तो वो नए नए आइडियाज़ लेकर आ जाते हैं, इसको इंग्लिश को ऐसा करो, चाइनीज़ में कन्वर्ट कर दो, फिर चाइनीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, और पता नहीं जो दिमाग में आइडियाज़ भी ऐसे शैतानी वो भी आते हैं। लेकिन फर्ज करें कि एक ऐसा टूल आ गया जो सारा करके आपके सामने खोल लेगा चट्ठा कच्चा चट्ठा, और 10 साल बाद 15 साल बाद आप किसी जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे होंगे, आपके नीचे वाला आपका मुखालिफ होगा और वो आपके खिलाफ पेश कर देगा, तो आपका पूरा करियर, जैसे वो फरमा रहे थे, बिल्कुल हकीकत कह रहे हैं कि पूरा करियर जो है वो तबाह हो जाएगा। तो चीटिंग से करियर ना बनाएं, मेहनत से बनाएं। तो रहबर मौजम कह रहे इस्तेमाल नहीं है ये, वो खिलौना जो वो बना कर दे रहे तुम इस्तेमाल कर रहे हो, और तुम ये समझ रहे हो तुमने एआई में बड़ा कमाल दिखाया है, ये एआई नहीं है भाई, ये तो टूल्स हैं, ये तो टूल्स हैं जो उन्होंने बनाकर तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हारे हाथ में एक खिलौना दे दिया और तुम उससे खेल रहे हो। ठीक, किसी ने कहा था कि सुबह रोशन मुझे मतलूब है, किससे मांगूं, तुम तो बच्चे हो खिलौनों से बहल जाओगे। तो हमें खिलौनों से बहलाया जा रहा है फकत, और हम इस खिलौने को समझ रहे हैं कि हमने एआई सीख ली है। एआई हैज, अब देखें रहबर मौजम इस मकाम पर हैं, एक मुश्ताहिद हैं, दर से खारिज देते हैं, पूरी रियासत को देख रहे हैं, पूरी दुनिया की सियासत को देख रहे हैं, एज उनकी 84 इयर्स से ज़्यादा हो गई है, इसके बावजूद आप देखें कि उनका जहन किस तरह काम कर रहा है और किस लेवल के ऊपर सोच रहा है, इनका विजन देखे, एक सलावात पढ़े उनकी बसीरत पर। फरमा रहे कि एआई हैज डीप एंड डाइवर्स लेवल्स दैट मस्ट बी अंडरस्टूड। मैं आगे बता रहा हूं डीप एंड डाइवर्स लेवल क्या है। दीज डीप डीपर लेवल्स आर करंटली इन द हैंड्स ऑफ अदर। ये जो एआई का जो डीपर लेवल है ये दूसरों के हाथ में है, ये आपके हाथ में नहीं है, और अगर ये आपके हाथ में नहीं है इसका मतलब ये है कि ये आपकी चीज नहीं है, ये इस मोबाइल की तरह है जिसका कंट्रोल उनके पास है। मैं और बहुत सारे मिसालें दे सकता हूं, नहीं दे रहा, टाइम नहीं है। द डीपर लेवल को जाके देखें, इसको भी बढ़ाएं, डीपर लेवल पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, और जाहिर है मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं इसलिए मैं ज्यादा गहराई में नहीं जा सकता, लेकिन मैं सिर्फ चंद चीजें आपको बयान कर रहा हूं। देखिए, एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक तो सिंपल जो कंप्यूटर है, आप उसको एक प्रोग्राम लिख कर देते हैं और उसके मुताबिक वो आपको रिजल्ट देता है। उसमें क्या होता है, उसमें होता ही है कि लॉजिक आप उसको खुद डिफाइन करके देते हैं और उसी के मुताबिक वो आपको आंसर दे देता है। फिर उसके बाद ये हुआ कि आपने उसको डेटा देना शुरू किया और वो उसको एनालाइज करके पेश करता है। इंटेलिजेंस का मतलब यही है, जहानत जिसको कहते हैं वो यही है। जहानत जो है वो मेमोरी को नहीं कहते, स्टोरेज कैपेसिटी को जहानत नहीं कहते, जहानत कहते हैं कि वो स्टोरेज जो आपके पास है, वो डाटा जो आपके पास है, जरूरी नहीं है कि आपके दिमाग में सेव हो, आपका दिमाग बहुत ज्यादा डाटा सेव नहीं कर सकता, डेटा जो है वो फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है आजकल, उस डेटा को सामने रख के उसको एनालाइज करना, उसको समराइज करना, उनके दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना, उसको कंक्लूड करना, सिंपली द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इज इंटेलिजेंस। यह है जहानत, जिसको आप कहते हैं जहानत, या इंसान जहीन है। जहीन का मतलब क्या है, क्विज कंपटीशन में जाके कार जीत किया जाता है, नो, दिस इज मेमोरी। जिस तरह कंप्यूटर के दो हिस्से हैं, एक उसकी प्रोसेसिंग है और एक उसकी मेमोरी है, तो इंसान के दिमाग के भी दो हिस्से हैं, एक उसकी प्रोसेसिंग है, एक है मेमोरी। तो मेमोरी जो है वो इंटेलिजेंस नहीं है, जो प्रोसेसिंग की क्वालिटी है वो इंटेलिजेंस है, कि कितना अच्छा आप डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, कितने अच्छे नतीजे अखज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन के दरमियान क्या रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ये बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं शोहदा की, अलग अलग मुल्कों की हैं, कोई लबनान का है, कोई इराक का है, कोई ईरान का है ना, ये मुख्तलिफ शोहदा हैं। अब ये तस्वीरें हैं आपके सामने, आप कहेंगे इनके अंदर कॉमन चीज़ क्या है, ये सब शहीद हैं, वो तो पहले लिखा हुआ है शोहदा मुकावमत, फिर कौन सी नई बात है। हाँ, अगर आप ये समझ सकते हैं कि ये जो शोहदा हैं, ये मूसा सदर हैं, ये जो इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, और उस रिलेशनशिप के जरिए कोई नया अगर आप नतीजा अखज कर सकते हैं कि देखो इसके अंदर कोई सुन्नी भी है, कोई शिया भी है, इस तरह भी है, तो वो जो आप रिलेशनशिप ढूंढ के निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन और डेटा के दरमियान, ये आपकी जहानत, कितने अच्छे नतायज आप निकाल सकते हैं, ये आपकी जहानत। तो कंप्यूटर अब तक क्या करता रहा, आप उसको डेटा देते थे, वो एनालाइज करके दे दिया करता रहा, एनालाइज करने के लिए जो लॉजिक है वो आप खुद प्रोवाइड करते थे। अब एक लेवल और आगे बढ़ गया और वो हो गई मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग ये है कि डेटा जो है वो कंप्यूटर को जितना भी मिल रहा है दुनिया भर से मुसलसल, हम लोग ही दे रहे हैं ना, गूगल जो आपको वेबसाइट दिखाता है वो किसी ने अपलोड किए, वेबसाइट जाहिर है कहां से दिखाता है, गूगल अपनी तरफ से तो नहीं दिखाता, और चैट जीपीटी जो आंसर देता है वो कहां से देता है, वो भी उसी मालूमात से देता है जो इंटरनेट पर लोगों ने अपलोड की हुई है। फर्क यह है कि वो उनको समझ के और एक आंसर बना के आपके सामने पेश करता है। यानी अब सूरत हाल यह है कि इंटरनेट जो है या आपका कंप्यूटर जो है वो डेटा के जरिए अपनी नॉलेज में इजाफा कर रहा है, अपनी स्किल में इजाफा कर रहा है। यानी हमारा जो कंप्यूटर है वो भी सीख रहा है, पहले वो सीखता नहीं था, अब वो खुद भी सीख रहा है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे डेटा में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे उसकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, कंप्यूटर के नॉलेज में इजाफा हो रहा है। दूसरा मरहला यह है कि पहले आप उसको एक लॉजिक देते थे और वो आपको टास्क परफॉर्म करके दिया करता था, अब उसके अंदर यह सलाहियत आ गई है कि लॉजिक भी खुद डेवलप कर रहा है, अब खुद ही लॉजिक डेवलप कर रहा है और आपके सामने वो लॉजिक भी पेश कर देता है। यानी उसके अंदर यह कैपेबिलिटी आ गई है कि वो सीख रहा है मुसलसल, तो ये एआई का कमाल है। अच्छा, जब वो सीखता जा रहा है, उसकी नॉलेज में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो फिर आपने उसको ये भी अलाउ कर दिया कि वो खुद ही डिसीजन मेकिंग करे, तो वो डिसीजन मेकिंग भी खुद ही कर रहा है। मसलन एक ड्रोन अगर जा रहा है या एक बैलिस्टिक मिसाइल अगर जा रहा है और सामने अगर फर्ज करें कोई बिल्डिंग है और उसको तबाह नहीं करना है, उसको जिस बिल्डिंग को तबाह करना है वो उसके ऐसे जिग जैग होकर कहीं और जाकर है, तो वो सामने जाकर 90 के एंगल पे ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर वहीं ड्रॉप होगा, वो खुद डिसीजन मेकिंग करेगा। ऐसी कारें चल रही हैं जो बगैर ड्राइवर के हैं, और कार खुद डिसीजन मेकिंग करेगी, खुद जाएगी और खुद देखेगी आगे दूसरी कार आएगी, रुक जाएगी, स्पीड कम कर लेगी, सिग्नल बंद होगा, खुद ही रुक जाएगी। ऐसी कारें चल रही हैं दुनिया में। तो ये जो काम है ये कि आपने डिसीजन मेकिंग को मशीन के हवाले कर दिया, ये इंतहाई खतरनाक भी हो सकता है, इंतहाई खतरनाक हो सकता है। अभी पिछले दिनों एक कुछ साइंसदान कुछ काम कर रहे थे सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर, तो उनकी नॉलेज में एक बात ऐसी आई कि वो हैरान रह गए। उन्होंने नोट ये किया कि जो हमारे कंप्यूटर्स हैं ये आपस में कम्युनिकेट करने लगे, और ऐसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, और हमें वो ये शो कर रहे हैं जैसे किसी मशीन लैंग्वेज में काम हो रहा है, हमें सिग्नल जो दे रहे हैं वो कुछ और दे रहे हैं, और ये जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ये कुछ ऐसी कम्युनिकेशन है जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने फौरन शट डाउन किया और उसको खत्म किया। उन्होंने कहा खबर इसके कि हम समझते रहेंगे हो क्या रहा है जब तक ऐसा ना हो कुछ और हो जाए। और ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं फिर जिसमें आपने देखा होगा कि कंप्यूटर या रोबोट वो बेकाबू हो गया और फिर उसने बड़ी तबाही मचाई। तो वो तो साइंस फिक्शन है, लेकिन ये रियलिटी में हुआ है कि जब आपने उसको ऑथोराइज कर दिया डिसीजन मेकिंग के लिए तो वो बढ़ते बढ़ते बात यहां तक पहुंच गई कि अब वो आपके हाथ से निकल भी सकता है। तो ये दूसरा लेवल है। उसके बाद एक तीसरा लेवल है जिसको डीप लेवल, डीप लेयर या डीप लर्निंग कहा गया। ये तीसरा लेवल वो है जहां पर इस वक्त सिर्फ एडवांस कंट्रीज पहुंची हैं और अभी इसके ऊपर काम हो रहा है मुसलसल। और जो मैं थोड़ा बहुत अल्फाज बीच में सुन के समझ पाया हूं, जो हमारे डॉक्टर साहब अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे कि उनकी भी अनुभव है और उनकी भी शायद यह फील्ड है, क्योंकि एक वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया और वह है न्यूरल टेक्नोलॉजी। इस तरह ये वो तस्वुर है जिसको आप जैसे ह्यूमन माइंड के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, इंसान के जहन जो काम करता है वो डिपेंड करता है इस बात पर कि आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं वो कितने एक्टिवेटेड हैं और क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। मेडिकल साइंस वाले कहते हैं न्यूरॉन्स का एक सिलसिला है। अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांसमेंट के दौर में अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अंदर ह्यूमन माइंड की तरह न्यूरॉन्स या न्यूरल लेयर्स या कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन किया गया है और मजीद किया जाएगा जो ह्यूमन की तरह काम करेंगे, इंसान की तरह। अभी किसी ने सवाल भी किया कि अगर चैट जीपीटी को आप कोई सवाल करते हैं तो वो जवाब देता है, अगर 100 लोग वही सवाल करें तो क्या वही जवाब देगा? अब तक तो ऐसा ही है, मिलते जुलते जवाब देता है वो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बहुत जल्द आपको ये सहूलत मिल जाएगी कि वो जो जवाब देगा वो ह्यूमन की तरह देगा, इंसान की तरह जवाब देगा। जिस तरह इंसान जवाब देते हैं ना, अगर आप 100 आदमियों से एक टॉपिक पे से बात करें सबके जवाब अलग अलग होंगे। तो अब जो आप एआई में जा रहे हैं तो उसमें जवाब अलग अलग होंगे, एक जैसे जवाब नहीं होंगे। और जो आपके उस्ताद मोहतरम बात कर रहे थे कि आप वो असाइनमेंट को देख के समझ जाते हैं कि एआई जनरेटेड है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है अब उस्ताद नहीं समझ पाएंगे, कम से कम फीडबैक तो नहीं समझेंगे, बाद में उस्ताद भी वो गुर सीख लेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो जो आंसर होगा वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह होगा, इंसान नुमा होगा। और जो बीच में एक जुमला कह रहे थे कि जी बाज अल्फाज देख के और हम समझ लेते हैं, वो अल्फाज है वो नहीं आएंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिस चीज की तरफ रहबर मौजम ने इशारा किया है वो सिंपल एआई टूल्स का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि उसके गहराई में जाके उसका मुताला है। अब मैं इसको मुख्तसर करता हूं, यही बात जो मैंने की है कि देयर आर टू सबसेट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। एक है मशीन लर्निंग कि अब जो मशीन है वो ऐसी है वो खुद सीख लेती है, पहले सीखती नहीं थी, आपको सिखाना पड़ता था, अब मशीन खुद सीख रही है। और अगला मरहला ये है कि वो मशीन न सिर्फ ये कि सीखेगी बल्कि इंसान की तरह बिहेव करेगी, इंसान की तरह रिस्पॉन्ड करेगी, इंसान की तरह तर्ज अमल इख्तियार करेगी। तो रहबर मोहतरम ने कहा कि टुडे साइबर स्पेस इज नो लॉन्गर जस्ट वर्चुअल, इट हैज बिकम ए रियालिटी इन द पीपल्स लाइफ। एक तरह वर्चुअल वर्ल्ड, साइबर वर्ल्ड, अब ये वर्चुअल वर्ल्ड से एक रियालिटी में तब्दील हो गई, अब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये चीज दाखिल हो गई है। आप ये नहीं कह सकते कि वर्चुअल है, अब वो चीज प्रैक्टिकल हो गई है, और जो नहीं हुई है वो भी मुस्तकबिल में जाकर हो जाएगी वो चीज। जिस तरह एक वर्चुअल करेंसी आ गई, अभी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, لیکن آگے چل کے اتنا استعمال بڑھ جائے گا کہ خود بخود اس کی کوئی قانونی حیثیت بن جائے گی. تو چیزیں جو ہیں وہ ریالٹی میں تبدیل ہو رہی ہیں, وہ چیزیں جو کبھی ورچوئل تھیں. ڈرائیور فرما رہے ہیں پروگریسنگ ڈے بائی ڈے, ڈے بائی ڈے اس میں ترقی ہو رہی ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ دیئر مسٹ بی ریگولیشنز فار سائبر اسپیس. تو ڈرائیور کہہ رہے ہیں کہ کچھ ریگولیشنز ہونے چاہیے, کچھ رولز ہونے چاہیے, کچھ لاز اینڈ پرنسپلز ہونے چاہیے. چیزوں کو بے قابو نہیں ہونا چاہیے, نالج کو بے قابو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ انسانی معاشرے نے آج تک جتنا نقصان اٹھایا ہے نا نالج سے, اتنا نقصان جہالت سے نہیں اٹھایا. جتنے انسانیت کو تباہ و برباد کرنے والی چیزیں ہیں وہ سب نالجبل لوگوں نے ایجاد کی ہے. وہ اٹامک بم ہو, بایولوجیکل ویپنز ہو, وہ نیوکلیئر ویپنز ہو, وہ کیمیکل ویپنز ہوں, یہ کیا جاہلوں نے ایجاد کیے؟ سبزی والے نے, دودھ والے نے, گوشت والے نے, ڈرائیورز نے؟ نو, سائنٹسٹ نے ایجاد کیے. تو نالج کو انہوں نے انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا. تو نالج کے اوپر بھی کوئی ریگولیشنز ہونے چاہیے, کچھ رولز ہونے چاہیے. دا انٹائر ورلڈ از ڈوئنگ دیٹ, ڈرائیور کرے پوری دنیا کر رہی ہے یہ کام. When you are running a country, it is your responsibility to ensure that your laws are not violated. اور جب آپ ایک ملک چلاتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ یہ کام کریں. وہ جو دنیا کام کر رہی ہے اس کے اوپر میں اشارہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں, یہ تھوڑی سی ایک مختصر سی لسٹ میں نے ایسے ہی سرچ کیا تھا تو ملا کہ کہاں کہاں جو ہے وہ اس حوالے سے لیجسلیشن ہوئی ہے 1996 میں, 1999 میں, 2002 میں, 2011 میں اور 2018 میں. یو کے جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن, یہ تو دنیا اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اور اس کے اوپر رہبر یہ فرما رہے ہیں کہ اف یو فیل ٹو پرووائڈ دا ڈیپ ڈائیورس لیئر آف اے آئی, اگر آپ کو ڈیپ اور ڈائیورس لیئر میں داخل نہیں ہوتے, ورلڈز پاور سیکر ول اسٹیبلش این اے آئی ایجنسی. تو دنیا میں یہ جو طاقت کے جنون میں مبتلا قومیں ہیں, امریکہ کہہ لیں یا اس کے حواری کہہ لیں, وہ کیا کریں گی؟ وہ ایک اے آئی کے لیے ایک ریگولیٹری ایجنسی بنا دیں گی, جس طرح انہوں نے اٹامک انرجی کی ریگولیٹری ایک ایجنسی بنا دی. کہ آپ اگر ایک ٹیکنالوجی حاصل بھی کرتے ہیں, فرض کریں کہ آپ کے سائنٹسٹ اگر اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ یورینیم کو انریچ کریں, تو وہ ایک پابندی لگا دیتے ہیں کہ آپ اتنے لیول سے اوپر انریچ نہیں کر سکتے, اور اگر آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کے خلاف پابندیاں لگے گی, آپ کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے. تو چونکہ قانون سازی سارا ان کے ہاتھ میں ہے, قانون سب وہ بناتے ہیں, وہ طاقتور ہیں اس وقت, تو وہ آگے چل کر اے آئی پر بھی اسی طرح کی کوئی قدغن لگا دیں گے. ابھی بھی بہت سی چیزوں پہ قدغن ہیں. آپ جتنے جینیس ہوں, آپ جتنے ٹیسٹ پاس کر لیں, جتنے اچھے انٹرویوز دے دیں, آپ جتنے بڑے سائنٹسٹ ہوں, آپ امریکہ میں جا کر نیوکلیئر فزکس نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, کہنے کو تو بہت جینرس ہیں یہ لوگ نالج کے معاملے میں اور سب کو نالج امپارٹ کر رہے ہیں, لیکن کچھ چیزوں پر انہوں نے بھی کرغن لگائی ہوئی ہے, پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو رہبر معظم کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ کیا کریں گے, کوئی ریگولیشن بنا دیں گے اس کے لیے, اینڈ دین پریونٹ یو فرام کراسنگ دیئر باؤنڈریز. پھر وہ آپ کو روک دیں گے, آپ اس حد تک یہ سیکھ سکتے, اس کے آگے نہیں کر سکتے, اس کے آگے ریسرچ ہی نہیں کر سکتے, ایسی پابندی لگ جائے گی ان کی طرف سے. جو ان کے پٹھو ممالک ہیں وہ خود موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ والا کام کریں گے. تو سنا ہوگا آپ نے نا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کہا کہ ہم اپنے میزائل کے رینج کو 2000 سے 5000 تک لے کے جانا چاہتے ہیں. میزائل کے رینج کو عبد القدیر خان نے کہا کہ ہم میزائل کے رینج کو 2000 سے 5000 کلو میٹر کرنا چاہتے ہیں. جنرل مشرف نے کہا اسرائیل کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہو؟ اس نے نہیں کہا اسرائیل, اس نے کہا اسرائیل کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہو. 2000 इज इनफ, इसके आगे नहीं जाने। तो किसने रोका है 5000 तक पहुंचने से? किसके टेलीफोन कॉल पे वो एकदम सरेंडर हो गए थे कि यू हैव टू डिसाइड वेदर यू आर विद अस और विद आवर एनिमीज? और उन्होंने कहा नो सर, मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, वी आर ऑलवेज विद यू। तो वो पाबंदी लगा देंगे और वो आपको क्रॉस नहीं करने देंगे, ठीक है। यू मस्ट रीच द डीप लेयर्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। रेबर करें कि आप उसकी डीप लेयर पे पहुंचें, आप उस डीप लेयर पे जाके काम करें, आप करें कबल इसके कि वो आपको रोकें। एंड परस्यू द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एआई विद इन द कंट्री, और अपने मुल्क में आप एआई के उस लेवल पे जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करें। यानी आप देखें रैबर का विजन क्या है, वो क्या चाह रहे हैं असल में। वो चैट जीपीटी नहीं चाह रहे, क्योंकि एआई का फ्यूचर जो है वो बहुत ज्यादा है किसी भी एतबार से देख लें। अब मैं इस पर गुफ्तगू नहीं कर सकता, टाइम नहीं है, लेकिन सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि एआई का मुस्तकबिल क्या है। जेनरेटिव एआई जो नया कंटेंट क्रिएट कर सकता है, टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक, जैसे चैट जीपीटी वाला कर रहा है। मल्टी मॉडल एआई दैट कैन प्रोसेस अंडरस्टैंड मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा सच एज टेक्स्ट, इमेज एंड ऑडियो साइमल्टेनियसली। एआई इन हेल्थ केयर, कि बड़ा इनकलाब जो है हेल्थ केयर के अंदर आने वाला है। आप एक रोबोट के सामने जाके बैठेंगे, वो आपका टेस्ट भी कर लेगा, मायने भी कर लेगा, आपके बीमारी भी सुन लेगा और दवा भी सजेस्ट कर देगा। एक रोबोटिक आर्म डॉक्टर अमेरिका में बैठा हुआ है, ये तजुर्बा तब भी हो चुका है और ये तजुर्बा ईरान भी कर चुका है। ये टेक्नोलॉजी ईरान भी हासिल कर चुका है, पहले अमेरिका ने किया। डॉक्टर अमेरिका में बैठा हुआ है, पेशेंट ब्राजील में लेटा हुआ है, एक रोबोटिक आर्म की मदद से उसका बाईपास ऑपरेशन हो गया। यही तजुर्बा ईरान ने किया अपने यहां, कि डॉक्टर कहीं और बैठा हुआ है, पेशेंट कहीं और लेटा हुआ है और रोबोटिक आर्म की मदद से उसका ऑपरेशन हो गया। तो अभी तो ये डॉक्टर खुद देख के कर रहा है ना कि यहां इस तरह करना है। वो जमाना आएगा डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर लेस, और मशीन खुद ही। अब आप सोचे जिस तरह की गलतियां होती है हमारे यहां कि सर्जन जो है कैंची भूल जाते हैं पेट के अंदर, तो उस पर क्या होगा। हेल्थ केयर के अंदर बहुत इनकलाबी तब्दीली आने वाली है। बिजनेस में तो आपको पता ही है, ये हर चीज बिजनेस है। तो बिजनेस के अंदर जो एआई है वो ऐसे ऐसे आइडियाज लेकर आएगी कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन जितने लोग बेरोजगार होंगे, अगर फर्ज करें कि 20 बिलियन लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो 1 ट्रिलियन जॉब क्रिएट होगी। अगर 20 बिलियन लोग बेरोजगार हो रहे हैं तो उससे कई गुना ज्यादा, 5 टाइम ज्यादा जॉब क्रिएट होगी। लेकिन अब जो जॉब क्रिएट होगी वो जॉब उन लोगों के लिए होगी जो स्किल्ड होंगे, और जो बेरोजगार होंगे वो अनस्किल्ड होंगे, ठीक है। जो मजदूर बेलचे से खड्डा खोदते थे उनकी जगह वो मशीन आ गई वैसे करके ऐसे उठाती है ना जमीन से मिट्टी, और वो डंपर पर ऐसे उंडेल देती है और वो डंपर चलता हुआ जाता है, वो ड्राइवर एक बटन दबाता है ऐसे उलटता है, पूरी मिट्टी नीचे गिर जाती है। जो 10 मजदूर उस ट्रक को भरते थे और 5 मजदूर उसमें से नीचे गिराते थे, ये सब बेरोजगार हो गए और एक मशीन ने ये काम जो वो शायद 4 घंटे 6 घंटे में करते होंगे, ये आधे घंटे में 2 मशीनें कर रही हैं। फायदा किसको हो रहा है? फायदा इन मशीनों के ठेकेदार को हो रहा है, और बेरोजगार कौन हो रहा है? मजदूर हो रहा है। तो मुस्तकबिल में भी यही होने जा रहा है कि जो अनस्किल्ड लोग होंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे, और जो स्किल्ड लोग होंगे उनकी नई नई जॉब क्रिएट होगी और उनकी सैलरी इतनी होगी। अभी इस वक्त भी एआई के एक्सपर्ट जो हैं वो $1 million माहाना तनख्वाह ले रहे हैं, जो लोग प्रोफेशनल काम कर रहे हैं और वो इंडस्ट्रीज के अंदर हैं, मल्टीनेशनल्स के अंदर हैं, $1 million पर मंथ। ठीक है, जाहिर है वो फिर 2 बिलियन कमा के भी दे रहे हैं। जो इंसान 2 बिलियन कमा के दे रहा है, उसको 1 बिलियन तनख्वाह देने में क्या तकलीफ है? एथिकल AI, एथिक्स, अखलाक, ये सब चीजें जो होंगी इसके ऊपर अखलाकी मसाइल भी तो पैदा हो सकते हैं ना, इनके ऊपर चेक रखने के लिए भी AI इस्तेमाल होगा कि अगर किसी ने प्लेजरिज्म किया है, अगर किसी ने बेईमानी से थीसिस लिखा है, तो उसको चेक करके ढूंढ कर निकालने का काम भी AI का हो जाएगा। तो एथिक्स में भी इन्वॉल्व होगा। और AIN क्रिएटिविटी ऑलरेडी इस वक्त वो कर रहा है, जैसे आपने इससे पहले भी सुना, आपने एक आइडिया दे दिया, उस आइडिया के मुताबिक कहानी लिख दी उसने, उस आइडिया के मुताबिक कार्टून बना दिए उसने, उस आइडिया के मुताबिक पूरा आपको आर्टिकल लिख के दे दिया। आइंदा ये चीज और एडवांस हो जाएगी और इसके अंदर वो चीज आ जाएगी जिसको आप कहते हैं ह्यूमन, इंसान नुमा। जिस तरह इंसान सोच रहा है, इस तरह मशीन सोचेगी। जिस तरह इंसान एक कहानी लिख सकता है, इस तरह मशीन लिखेगी। जिस तरह इंसान डायलॉग बोल सकता है, अदाकारी कर सकता है, इस तरह मशीन करेगी। तो जो मुस्तकबिल है वो इसी तरफ जा रहा है। रहबर मुअज्जम ने हमें पहले बताया है, सॉरी ये तो मैंने आगे बढ़ाया ही नहीं। That's all. तो इस तरह रहबर मुअज्जम चाहते हैं कि हम हर शोबे के अंदर आगे बढ़ें और महारत हासिल करें, गहराई में जाएं और दुनिया को लीड करें, सिर्फ उनके बनाए हुए खिलौने के यूज़र ना बने। ऑफकोर्स सब लोग ये काम नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग ये कर सकते हैं वो आप ही जैसे लोग हैं, वो कोई आसमान से उतर के नहीं आए हैं। ये इतने बड़े बड़े जायंट इदारे अगर चल रहे हैं अमेरिका के, यूरोप के, अगर आप वहाँ जाकर देखें, 80% लोग एशियंस हैं, इंडियंस काम कर रहे हैं, पाकिस्तानीज काम कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों के लोग साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। उनका अपना टैलेंट जो है वो ख़त्म हो रहा है, अय्याशियों में जा रहा है, दूसरी चीज़ों में चला जा रहा है, लेकिन एशियंस जो है वो उनके इदारे चला रहे हैं। आज गूगल में देखें कितने एशियंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट में देखें कितने एशियंस हैं। तो वो आप ही जैसे लोग हैं, वे आसमान से उतर के नहीं आए। तो रहबर मुअज्जम एक विजन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग इसके ऊपर तवज्जो दें। ठीक है, यहीं इख्तिताम करता हूँ मैं। अगर सवाल जवाब की कोई गुंजाइश है तो मैं हाजिर हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।